और हम लोग के यहाँ कायदे ये है कि अपने को अपने खाली तौर पर अपने गुरु में लय कर देते हैं और ये ख्याल करते हैं कि हम नहीं, हमारे गुरुदेव बैठे हैं। तो जितना फायदा होता है वो सब उन्हीं की जात से होता। लेकिन कहना ये आसान है, प्रैक्टिकली बिल्कुल यानी बहुत मुश्किल है। जब आप रेगुलर करते रहेंगे तभी ये संभव है। जब रेगुलर, हमने आप बताया 70 साल से कर रहे हैं, लेकिन यही कह सकते हैं 70% सक्सेस हुई। जबकि शुरू से उन्होंने कहा बस बेटे तुमको इतना करना है, खाओ तो ये सोचो हम खा रहे हैं, जाओ तो ये सोचो, जो भी काम करो वो खाली हमारा ख्याल करते रहो। तो थ्योरेटिकली कहना तो बहुत आसान है, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल। और फिर आप कहीं भी बैठे हों, आपकी ख्याल की धार वो होगी, वहीं पहुंचेगी जहां वो जाएगा, और फिर आप किसी को फायदा कर सकते हैं। इसी पर कबीर साहब ने कहा कि कितने ही दूर हो शिष्य, वो हमसे फैजयाब हो सकता है, सबसे नहीं हो सकता। इसीलिए शुरू में सोबत की बड़ी जरूरत पड़ती है। जब आपके ख्याल मिल जाते हैं तो फिर आप जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बताया थ्योरेटिकली कहना आसान है, प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल। प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल है। तो उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि हमेशा एक उनसे प्रेम था। बाबूजी बराबर कहते रहते थे बेटे तुम लोग समझते नहीं, ताऊजी तुम्हारे बड़े भारी सेंट हैं। कुछ समझ में नहीं, जो तबीयत आती थी वो कह देते थे। उनकी कोई बात पसंद नहीं, नहीं नहीं ताऊ जी आप गलत कर रहे हैं, कैसे कर देंगे आप ऐसा। बच्चों की शिकायत हुई, लेकिन कभी उनने ये नहीं कहा कि बेटे ऐसा क्यों करते हो। बस हमेशा एक आए बेटे तुम्हारा काम इतना है तुम करते रहो, बाद बाकी सब हमारा काम है। कभी कभी हंस के कह देते थे तुम लोग को क्या करना, हम कर ही रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। सबसे पहले इत्तेफाक ये हुआ, एक मरते डेढ़ दिन से हम लोग वाके पे थे, बड़ी पैसा एक पास नहीं था। हमारे फूफा जी की लड़की वहां रहती थी, कभी गए हो उन्हें बगैर खाए नहीं लौटा। उस अकाल पर उनके यहाँ खाना बन गया था, उनने एक मरते जरूर पूछा खाना खाओगे, हमने कहा शाम को आप जब तशरीफ लाए तो बड़े खुशी हुई। मुश्किल से 5 मिनट रुके होंगे, चलते वक्त उन्हें 10 रुपए दिए। उनका नहीं था जी इसकी जरूरत नहीं, बोटे इसकी जरूरत ना होती तो मुझे यहाँ तक ना आना पड़ता, क्योंकि कभी उनने पैसे नहीं दिए, ये कोई सिस्टम ही नहीं था। तो बताया ना गुरु शिष्य का रिश्ते ही, हम पूछे ताऊ जी आप कैसे मानोगे, बोले बेटे हम तो पूजा करने जा रहे थे, हमारे सामने तुम्हारा परेशान चेहरा था, फौरन हम चल दिए, तुम आखिर आपको कैसे मालूम हुआ कि परेशान। बोले ये जो तुम हर वक्त ख्याल करते रहते हो ये उसी का ख्याल की धार कहीं से कहीं, मतलब बात मान ली उनसे लेकिन कोई कन्विंस नहीं हो। फिर जब फिफ्थ ईयर में थे तो हॉकी खेलते हुए हमारा पैर टूटा, शाम को बड़ी तकलीफ थी, देखा साहब ठीक 8 बजे आप पहुंच गए, उस वक्त कन्विंस हो गए। तुमने बेटे और कुछ अब इससे ज्यादा कौन सा सहल तरीका होता है कि खाली 24 घंटे आप गुरु को याद करें। इसमें चाहे बच्चा हो वो भी कर सकता है, चाहे लेडी हो वो भी कर सकती है, नाम का जाप कर। नियम तो इसलिए बना लेते हैं जैसे माँ बाप कहते हैं सुबह उठ के मंजन जाती, मंजन दोपहर में भी हो सकता है, लेकिन हर शख्स जो सुबह मंजन कर लेता है तो वो दोपहर में भी कर ले, कोई हर्जा नहीं। इसलिए खाली नियम बनाते हैं, किसी एज का आदमी हो, शारीरिक कष्ट हो, किसी फॉर्म हो, अभ्यासी का काम कुलित नहीं है, कि दिन भर उनको याद करता रहे और नाम का जप करता, इसके अतिरिक्त तो उसे कुछ करना ही नहीं। इसमें जिन चीजों से बाधा पड़ता हो उन्हें छोड़ता चले। उनके पीरियड में कोई चीज समझ नहीं आई, परम पूज्य भौजी महाराज साहब की एक आइडियल लाइफ देखी हरेक की, तब ये नतीजा समझ में आया कि हाँ साहब क्यों। जब तक समझ में नहीं आती बच्चे से हर माँ बाप कहता पढ़ो बेटे मेहनत करो पढ़ के अच्छे बन जाओगे, उसकी समझ में तभी आता है जब वो के अच्छा बन जाता है, उससे पहले वो सोचता भी जरूरत पीछे पड़े रहते हैं हर वक्त एक चीज की। तो खाली पूजा ही है कि आपकी ख्याल की धार आपके गुरु के अलावा कहीं नहीं। इसके अलावा कोई पूजा नहीं। आप कितने ही इतिहास पढ़ लीजिए, कितनी ही हिस्ट्री पढ़ लीजिए, कितने ही ग्रंथ पढ़ लीजिए, आप वाचक ज्ञानी हो सकते हैं लेकिन आपका खुद का अनुभव नहीं हो सकता। और जब तक आदमी के खुद पर नहीं बीतती तब तक उसको विश्वास होता ही नहीं है। किसी कारण विश्वास हो गया तो वो टिकता नहीं है। दुनिया भी कोई काम हो गया उसे विश्वास हो गया, तो दूसरा काम नहीं हुआ तो उसको विश्वास टिक गया, उससे कोई फायदा नहीं। जिस हाल में ईश्वर ने रखा है उसी में खुश रहना चाहिए, उसी को गनीमत जान के। और ये परम पूज्य भाव जी महाराज साहब ने इसका आइडियल रूप करके दिखाया, जिस हाल में उन रखे वो उन्हें कभी वो नहीं, यानी खाली इस बात के पंथ जी ने 50 करोड़ रुपए लिए थे पार्टी के नाम पे कि डालडा और असली घी में रंग नहीं मिलवा जाए। और सबसे बड़ी मंडी वहां थी तो सबसे पहले बाबूजी को प्रेशर पड़ा कि इसको यहाँ पास नहीं होने दीजिए ना, ये आइडियल वे है कि मिक्सिंग ना हो, इसको गुलाबी रंग से कलर कर दिया जाए। जब पास हो गया तो कोई जरिया नहीं था, हर तरह के लालच वो दिए गए। तब आखिर में हुआ कि साहब असेंबली के एजेंडे से इस चीज को हटा दीजिए, ये टॉपिक ही खत्म कर दीजिए, उनने अपने सुने तो। उसके बाद उनका ट्रांसफर भी हुआ, पर जब बनारसी दास जी इलेक्शन लड़े तो फिर इनने ऑर्डर करा दिया। तो बाबू जी ने कहा कि हम वहां वापस नहीं जाएंगे, अब जहां से हमारा ट्रांसफर हो गया है हमें वहां कोई लालच ही नहीं है सर। लेकिन हाँ ये है कि आपके हमारे पर्सनल ताल्लुकात है, हम वहां जाके ये आपकी इलेक्शन में मदद कर देंगे, जो हमारे परिचित लोग हैं उनसे हम कह देंगे। और जबकि वहां काफी आराम था, बुलंदशहर में उसमें कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, गुर्जा में उसमें डिग्री कॉलेज था और साइंस बायोलॉजी से भी था। अगर वो वहां वापस गए होते तो हो सकता है हम लोगों ने बिठे जिस जगह से छोड़ के आओ उससे कभी वापस मत जाओ। लोग ये समझते हैं इनका कोई इंटरेस्ट है, न तुम्हारा इंटरेस्ट हो लेकिन लोगों उस काल को तो नहीं हटा पाओ। तुमने जीवन आइडियल रखा और हर विषम परिस्थिति में तो खाली अभ्यासी को यही करना है, न मंत्र का जाप करना है ना कुछ, ये तो एंगेजमेंट है हमारे मन को तो आपको एंगेज करना पड़ेगा। अच्छा है ईश्वर के काम करता है, नहीं है तो कोई अच्छा काम ले ले, अदरवाइज सब यही पूजा है कि अपने गुरु को आप हर वक्त याद करते रहें, नाम का जाप करते रहें। नाम के जाप में ओम से अच्छा कोई नाम नहीं है। नेक्स्ट ये कह सकते हैं नाम का नाम, राम में आपको इंद्री का प्रयोग करना पड़ता है, कोई मंत्र ले आपको जवान है उसका प्रयोग करना पड़ता है, ओम में हरी सांस का है जो आखिरी वक्त तक चलती रहती है, इंद्रिया जवाब देती है। और यही एक नाम ऐसा है जो ध्रुपद का, जो लोग अक्सर राम का नाम का जाप करते थे उनसे बाबूजी का ठीक है करते रहिए आप ओम राम ऐड कर लीजिए, उनको भी यही बताया। गुरुदेव भी हमारे सबको ओम ही का नाम बताते थे। जिन चीजों से बाधक है वो छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे न दीन के रहेंगे न दुनिया। सबसे बाधा किस में ये होती है, खाना जितना सादा खाएंगे उतने ही आपके विचार, जितना उनके बेटे अगर 4 रोटी की भूख हो तो 3 रोटी खाना चाहिए, तीन से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हमने गुरुदेव को कभी ये उनकी दिन के ताई जी के डेथ के बाद दो या तीन रोटी जाती ने बस वही खा दो और सेकंड मर्तबा मांगते नहीं, काफी लहम सहम तंदुरुस्त थे। बाबूजी को जीवन भर यही देखा, कभी किसी शादी ब्याह से लेके हमने उन दोनों जनों खाते नहीं देखा। हाँ हाँ ले रहे हैं ले रहे हैं, पर ज्यादा से ज्यादा कभी कोई जिसने बहुत प्रेस किया तो कोई फल ले लिया, अदरवाइज कभी नहीं। किसी गलत आदमी से उनने वास्ता नहीं रखा, कितना बड़ा करैक्टर था कि उनके सगे भाइयों वो भी लालाजी महाराज साहब के शिष्य, जिनके लिए लालाजी महाराज साहब ने लिखा कि जब ये हमारे पैर ढाप देते तो हमें बड़े आराम मिलता था, और उनके घर कभी गए ही नहीं, खुद भी नहीं गए, हम लोग को नहीं ले गए। दिल्ली जाते थे तो हम लोग को दूसरे घर छोड़ते थे, उनके बेटे वो जरा थम पास में था। उनके बेटे उनका रहन सहन ऐसा नहीं है जिसका सब, ऐसा ना करो कि तुम लोग कबूल कर लो और हमारे गुरुदेव के बारे में क्या कहना। वो तो एक दिन किताब पढ़ रहे थे लाला जी महाराज साहब की, तो उसमें ये लिखा गिरवर किशन से उनने पूछा क्या तुम बनना चाहते हो साहब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अरे उन्होंने कहा तुमने ही मांग कर चलो इनकम टैक्स ऑफिसर बनाए देते, और जो वो पैर दाब देते तब भी हमने कहा ताऊजी ये तो आपके भाई लाला जी महाराज थे दीक्षित हमने उनका बेटे, उनने थोड़ा सर्विस से उनकी इस खिदमत से प्रशंसा कर दी। लेकिन ये इनकम टैक्स ऑफिसर होने के बाद इनका रहन सहन ऐसा नहीं रहा जिससे हम तुम लोगों को, जिन चीजों से चाहे कोई भाई हो चाहे वो हो उसको आपको छोड़ना पड़े, और यही त्याग है असली त्याग जिसे कहते हैं वो यही है। ज्यादातर लोग उन्हें सब बुरा मान जाएंगे, अधिकारी है फलाना है, लेकिन ये किसी कोई बहुत कम लोग सोचते हैं ईश्वर भी कोई बुरा मान नहीं था, आखिर उससे भी तो कुछ बुरा मानने का हक है। बात बाकी हमने न ताऊजी को देखा न भाऊजी को देखा, किसी काम के लिए नहीं मरे। इलेक्शन भी लड़ते थे, खेलते कूदते सभी चीज करते थे, और जबकि कोई गलती भी हो जाती तो कहते बेटे हमने भी कॉलेज टाइम में ऐसे ही किया था, सब अपने ऊपर ले लिया करते थे। कभी किसी चीज के लिए उनने ये नहीं कहा कि ऐसा मत करो। और जब कोई कभी गलती हुई या कहता हो जी ऐसा हो गया तो उन्होंने ये बताओ उस वक्त तुम क्या सोच रहे कैसे तुमने, हमारा ख्याल था तो मैं हमका नहीं था तो उन्हें इसीलिए गलती हो गई। तो बार बार टोकते रहते थे कि नहीं जो काम करो जब तुमसे कह दिया वो हमारे ख्याल में करो तो कैसे नहीं करते। दीन को अच्छा से अच्छा निभाइए, लेकिन दुनिया को अच्छे से अच्छा निभाइए, दीन का हमेशा ख्याल है, वरीता दीन का दीजिए। कोई बुरा माने कोई अच्छा माने उसकी कभी चिंता मत करिए, बस ये सोचिए ईश्वर क्या बुरा मानेगा। तब कभी डिफरेंसेस नहीं होगा, कभी आपके दिमाग में गलत ख्याली नहीं आएंगे। और यही प्रैक्टिकल वे है जो इन लोगों ने समझी। दादा जी महाराज साहब ने इनसे कुछ नहीं, बाबू जी को इतना बताया था कि बच्चे यहाँ आना अच्छा लगता है चले आया करो। बाबू जी को बताया कि अगर हमारी सूरत अच्छी लगती है उसी को देखते रहो, इसके अलावा कोई अभ्यास ही नहीं बताया। बस ये कहा, तो हम जब कर रहे हैं वो सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं, इसलिए कोई चिंता की बात, वो भी यही कह देते थे। लेकिन ये लोग हर वक्त उन्हीं के ख्याल में। चाची जी महाराज साहब ने लिख के ताऊ जी को भेजा कि तुम भाई साहब के प्रिय हो, लेकिन श्यामलाल को तुमने हमसे दूर कर दिया, इससे हम तुमसे खुश नहीं। लेकिन बाबूजी ने रिस्पेक्ट की, सब कुछ किया, लेकिन खाली लाला जी महाराज साहब को छोड़ के याद किसी की रिस्पेक्ट तो उससे ज्यादा किसी ने की नहीं, कि वो सबसे छोटे थे, हरेक की बड़ी की। लेकिन ये था, हमेशा लाला जी महाराज साहब के अलावा किसी का, आप देख लीजिए आखिरी वक्त यही कहते थे, बेटे न जाने क्या उनने समझ के हमको इतना वो किया, वरना हम इस काबिल नहीं। गुरुदेव को देखा हमने, लास्ट सेंटेंस सुन के एक, बेटे इन बदमाशों ने मुझे कहीं का नहीं रखा था, बस मेरे गुरुदेव लाला जी महाराज साहब हर वक्त साथ रहे, वही मुझे बचा लेते। तो खाली हमारा आपका काम यही है, यही अभ्यास है, यही पूजा है। और जिस वक्त उनकी हस्ती काम करेगी कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि वो उनका मुकाम आत्मा का है, हमारा मुकाम आपका मन का है, तो हमसे गलतियां हो सकती हैं। जब हम लोग भी इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि परमानेंटली आत्मा की हालत होगी, तो हमसे भी गलती नहीं होगी। और जो कुछ है आप कुछ मत करिए, खाली इसी किताब को पहले खूब पढ़ लीजिए बार बार, फिर समझिए, समझने के बाद जो है उस पर अमल करिए कि हम साहब इसमें से कौन सी चीज पहले है। जब कुछ होती थी हम लोगों को बताओ जी ये कमी है, उन्होंने अच्छा सब गिनो कितनी कमियां हैं, क्यों पहले कमियां क्यों गिनते हो, फिर छोटी छोटी गलतियों को छोड़ते चले जाओ ताकि सक्सेस मिले, बड़ी के बारे में बाद में सोच। कभी उन्होंने ये नहीं कहा साहब ये करिए। और देख लीजिए कि छोटी चीज थी, सिगरेट पीने की आदत तुमने अपने वापसी से पहले, बाद में शर्मा बहन जी बताती थी कि उनकी जब डेड बॉडी कपड़े हटाए गए तो हमारी 5-6 चिट्ठियां थी, उन्हीं को रख खेलते रहते, उन्हें ये क्यों नहीं हटरे हटा, तो गलत सब लोग समझते थे इनका दिमाग वो हो गया। बाद में समझ में आई खाली कमियों को दूर करना है, वही आदत बाबू जी ने दया करके भाई साहब को छोड़वा दी, जबकि हम लोगों में इतना तालमेल था कि हर तरह से जुड़वा भाई जुड़वा खास सब कुछ थे, लेकिन नहीं छोड़ पाए। और दोनों जनों ने वो हमेशा ये कहते बेटे जो कर सकते हो अपने जीवन में करना, मरने के बाद शरीर नहीं रहता है कि कर्म नहीं कर सकते, तो हमें आपको तो बस इतना ही करना है कि किस तरह से, और जब तक उनकी हस्ती कायम करती रहेगी तब तक कोई धोखा नहीं है, जब यही निस्बत टूट जाएगी तो फिर धोखा ही धोखा, तो फिर कहाँ मालिक हम लोग रहे, मालिक तो दूसरा रहा, मालिक जो है वो तो दूसरा रहा। हम सब जो हैं परम पूज्य लाला जी महाराज साहब के बताए हुए असूलों को फॉलो करते हैं, तो असूल तो सब उन्हीं के हुए, उसको परम पूज ताऊजी महाराज साहब, पाऊजी महाराज साहब ने अपने युग में जितने अच्छी से तरह हो सकता उसे फॉलो किए। हम लोगों ने अपने युग में फॉलो किए तो मालिक तो वही रहे, मालिक तो हम लोग हुए नहीं। तब फिर काहे को, जब नौकर हो नौकर के हिसाब से रहिए। तो कभी धोखा नहीं होगा, कभी अहंकार नहीं होगा, और नहीं हमेशा धोखा होगा। माया इतनी आसानी से नहीं छोड़ती, उसी दिन देखिए रावण के पहले सब ख्याल हट गए कि शिव जी को कैसे उसने फतेह किया, इसको कैसे किया, जितनी पुरानी चीजें थी तो जब हट गई। और जब एंड में भगवान राम ने कहा है लक्ष्मण जी से कि बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी जिसको दीन दुनिया दोनों की नॉलेज थी, आज वापसी जा रहा है उससे सीख लेके आओ, कि गए हैं तो पहले का पहले गुरु से व्यवहार सीख के आओ तब कुछ सीख दूंगा। उस मालिक होता जिसकी चीज होगी वो कैसे देगा। फिर ये गए उनका नहीं, पैरों की तरफ जाके और रिक्वेस्ट करो। और जब उसका एंड हुआ तब उसके मुंह से राम, राम उसके मुंह से भी निकला, लेकिन जिस शरीर से आप काम ले सकते थे उससे एंड में निकलने से, जबकि खुद विष्णु भगवान का वो किसी टाइम में पहरेदार रख सकता। तो जब हमारे सब पिछली चीजें खत्म हो जाएंगी, अहंकार खत्म हो जाएगा, तो ईश्वर का नाम अपने और ये जब तक गुरु साथ नहीं होगा तब तक इम्पॉसिबल है। तब तक माया बराबर है, हमला करती रहेगी और कूदता रहेगी। उसी को रामायण में लिखा है कि जन्म जन्म लोग जतन करते हैं तब भी आखिरी वक्त राम का नाम नहीं आता। मरते हुए देखिए और आप देखिए कितने क्या था, पूजा सब करते हैं और उसका अस्पताल से अच्छा कहीं कुछ नहीं मिल सकता। जिनकी एंड टाइम है उनको देख लीजिए तो आपको सब मालूम हो जाएगा। आप नॉर्मल आदमी होकर सब उसकी हिस्ट्री बता सकते हैं, इस आदमी का क्या हाल है, इसके मन में क्या क्या है। लेकिन अगर जीवन भर उसे याद करते रहेंगे तो फिर वाकई में ओम नाम, राम नाम या गुरु वो साथ, उसमें कोई और तो ये जैसे पंडित औरों की मोक्ष करा देते हम लोग की मोक्ष करा देंगे, और सिवा बैकुंठ धाम के किसी को नरक में नहीं भेजेंगे। लेकिन ये आएगा उसी के जो बराबर लेने का आदि होगा, अदरवाइज इम्पॉसिबल। इसीलिए इस किताब को पढ़िए, इस पर सब तरीके तालीम से लेके सब चीजों का वो है। पहले इसीलिए नहीं पढ़ाते थे कि रामायण पढ़ा लेते थे, आधे लोगों को ये शिकायत थी कि परम पूज्य भावजी महाराज जिन चीजों से कोई फायदा नहीं उनकी लोग बहस करते हैं, तो सब परम पूज्य भावजी महाराज साहब के टाइम में रामायण पढ़ी जाती थी, ये नहीं सोचते कि क्यों पढ़ी जाती, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। उनसे भी रूटीन से अलग है, ताऊजी साहब कभी रामायण पढ़वाते ही नहीं थे। जब एक साल के लोग आ गए तो फिर ख्याल इकट्ठा करने में आए, ये तो इसलिए था कि एक वो ग्रंथ ऐसा है जिसको हर शख्स मानता, इसलिए उनने सबको एक लेवल पे लाने के लिए ही किया। जिस चीज की आपको आदत पड़ जाएगी उसमें आपको कोई कष्ट नहीं होगा। अदरवाइज कष्ट ही कष्ट है। हमको उस फ्रैक्चर के बाद भी 3 मील टहलने की आदत थी, 3 मील जाते थे कोई कष्ट नहीं होता था, बच्चे हमारे 10 कदम नहीं जा सकते, या गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे उसका तो, क्योंकि आदत नहीं है, उनकी आदत नहीं है। तो जिस चीज की आपको आदत पड़ जाएगी वही चीज आपके साथ, उसी को आप आसानी से कर।